ओम शांति। सभी थोड़ी देर बैठे रहेंगे। पहले तो हम भाई जी को दो हाथ की तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तीन चीजों का डिटॉक्स करना है, एक तो डिजिटल, फिर आहार का, और तीसरा भाई जी क्या बताए,
संस्कारों का, मूल तो
संस्कारों का। तो संस्कार परिवर्तन के लिए भी भाई जी ने चार बातें बताई है ना। एक तो समझ जो बाबा की मुरली से मिलती है, फिर महसूस, फिर तपस्या, और चौथा सहन करना, त्याग करने की शक्ति, यानी खुद का टीचर खुद को बनना है। और तपस्या जीवन में तीन बातें बताई, दृढ़ता संपन्न संकल्प, देह की वैराग्य वृत्ति, और एक बाप दूसरा न कोई। तो अच्छी तरह से हमने इस बात को समझा कि हमें कैसे हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण करना है। अब जब पट्टी का अंतिम पोहर है तो भाई जी कहते किसी को अनुभव सुनाना है, सुनाना है। आइए, पहले आप आइए, आपने बोला था ना कि मेरे को जरूर बुलाना। और रात्रि क्लास रहेगा 8:30 से 9:30 ब्रह्मा कुमारी अरुणा बहन बड़ौदा अटलात्रा।
ओम शांति। पहली बात तो ये भट्टी मुजफ्फरपुर वालों की है और छत्तीसगढ़ से हम दो बहनें एज ए गाइड आए थे प्रोग्राम में, तो हमने भी अपना भाग्य बना लिया आप लोगों के भाग्य से, तो हमारे लिए ताली बजा दीजिए। वैसे तो बाबा के हर एक बच्चे के पास अनुभव का खान होगा, बट मैं बाबा से जब शुरू जुड़ी, बहुत ज़्यादा ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पता नहीं था, और दुख के पहाड़ जब गिरे थे तब तो इधर आई थी। उससे पहले तो फैशन की दुनिया और अपना हर चीज़ का, पढ़ाई का, धन का, सब चीज़ का था जरूर, हाँ कभी घमंड दिखाया नहीं, बट अंदर तो रहता है ना, तो वैसे सब में थी। लेकिन जब बाबा की बच्ची बनी, धीरे धीरे अनुभव हुआ, तो एक इतना बेहतरीन अनुभव जो मैं आप लोगों को उसे शेयर करना चाहूँगी, जो दूसरे नंबर का अनुभव था। पहला तो थोड़ा बड़ा, इसलिए वो नहीं बताऊँगी। मैं एक समाज सेविका भी रही शुरू से, तो कुछ लोग मुझे कनेक्ट होते थे मुझसे, वो मुझे फिर मदद के लिए बोलते थे। तो जी वही चीज़ बता रही हूँ दीदी। मेरे घर में एक ज़रूरतमंद यंग लड़का, जिसको कोई अपने साथ लेके आया था कलकत्ता से कि यहाँ जॉब दिलाऊंगा, 20,000 की नौकरी तुम्हारे लिए फिक्स है, लेकिन लाने के 2 महीने बाद उसने हटा दिया, कोई नौकरी भी नहीं दिलाया। वो मेरे पास आकर के रोया और बोला कि मैडम मैं अपने घर में अपने माँ बाबा को बोल के आया हूँ, बंगाली लड़का था, बोला अपने घर में बोल के आया हूँ कि 20,000 की नौकरी और मैं 12,000 आपको भेजूंगा, 8 में रखूंगा, आज 2 से 3 महीना हो गया मुझे एक रुपया भी नहीं मिला और कोई नौकरी नहीं दिलाया, अब कहता है जैसे आए थे वापस जाओ। तो मुझे दया आ गई और मैंने उसे, मेरा ऊपर का दोनों रूम खाली रहता था, हम जाते तो थे नहीं, बच्चे छोटे, घर बड़ा है, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है मेरे फिटनेस क्लास में सारी लड़कियां और औरतें आती हैं, तो 9 बजे तक बाहर नहीं निकलना, एक कमरे में बिल्कुल चुपचाप बंद रहना। और पति से भी परमिशन मैंने ले लिया। फाइनली उसके पास कोई काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तो रोज उसे मैं बच्चों के हाथ खाना भेज देती थी और उसके लिए 2-4 जगह बात करके उसे काम पे लगाया, छोटे मोटे पैसे मिल रहे थे। एक दिन वो मुझे बताता है कि आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं, मेरे को इस चीज़ की नीड है। मैंने कहा कैसे, तो वो बताया कि अभी 1 हफ्ता पहले मैडम मैं आया, पूरा चौपाटी बंद था, क्लास लेकर के आया, पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी था नहीं, क्योंकि जहाँ नौकरी आप लगाए थे वो महीना होने के बाद पैसा देते, तो मैं बहुत भूख से तड़प रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, नींद नहीं पड़ रही थी, पूरा भीग के आया था। मेरे बेटे ने, 8th स्टैंडर्ड में मेरा बेटा है, उसने दरवाजा खुला था, तो मुझे पता नहीं चला कि वो आ गया और मैं व्यस्त थी, तो उस दिन मैंने कुछ खाने को दिया नहीं उसे, और वो भूख से तड़पता रहा, कहता है कि मैं लेफ्ट राइट कर रहा था कमरे में, फिर पूरा 1 बॉटल पानी उठा के मैं पी गया, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। रात का 10:30 बजा, नॉक हुआ दरवाजे पे, मैंने दरवाजा खोला तो आप खाने का थाली लेके खड़े थे, और वो तो उसका सुनते सुनते तो मेरे पूरे रोए खड़े होने लग गए, क्योंकि मैं ऊपर 7 बजे के बाद तो जाती ही नहीं थी अपनी योगा क्लास खत्म होने के बाद। तो उसने कहा कि आपने पूरा खाना दिया, फिर मैं खाया तब नींद पड़ी, अब मेरी रूह कांप गई। जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने उनसे कहा कि वो रंजीत भैया ऐसा ऐसा बोल रहे थे बेटा, तो बच्चों को जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा भैया को नीचे बुलाते हैं, रंजीत नाग नाम है उसका, उसे नीचे बुलाया, बैठा ला, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की कि ये क्या बताएगा। तो उसे मेरा बेटा पूछा कि रंजीत भैया मम्मी रात को खाने में आपको क्या क्या दी थी, तो वो कहता है एकदम गर्म भाप उड़ता हुआ भात था, बंगाली लोग भात ही बोलते हैं ना, भाप उड़ता हुआ भात था, दाल था, 2 सब्जी था और पापड़ और सलाद था। तो सुनते सुनते मुझे फिर से पूरी मैं कपकपासी आ गई। तो मेरा बेटा ही कहता है कि भैया हमारे यहाँ ना रात को भात नहीं बनता। फिर उसने मेरे तरफ देखा, मैडम अनीश क्या बोल रहा है। मैं बोली हाँ बेटा, मैंने तुझे खाना नहीं दिया। तो वो कांप गया, कहता है बाप रे फिर मेरे को खाना कौन दिया। तो मैंने उसे कहा जिसको याद करके मैंने तुम्हारी जॉब लगाई बेटा, मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान ही करने वाला है, उसे पता था कि तुम मुझे याद कर रहे हो, मैं तो भूल गई कि तुम भूखे आए हो, तुम्हें कुछ देना भी है, पर उसे नहीं रहा गया, उसने ये देखा ये मदद तो करती है बट आज तो इसे पता ही नहीं चल पा रहा है और तुम भूख से सो नहीं पा रहे हो, तो वो सर्वशक्तिवान भगवान तुम्हें आकर थाली देके गया। जब उसे कहा थाली कहाँ रखा, तो कहता है यहाँ बेसिन के नीचे ही रखा था। बोलता है मैंने सोचा हो सकता है भाई सुबह ले गई होगी, पर जब मुझे ध्यान आया मैंने तो दिया ही नहीं, तो सूक्ष्म ही वो भोजन खा गया। सोचिए जब बाबा वो उसे नहीं जानने वाला बच्चा जब उसकी इतनी मदद कर सकता है, हम भगवान के सेलेक्ट किए हुए बच्चे हैं, हमारी मदद करने क्या वो हर घड़ी नहीं होगा, 100% होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा अनुभव, सॉरी कुछ मैंने डिस्टर्ब फील कर रही थी, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
इस भट्टी से क्या लक्ष्य लिया, हाँ, मूल अगर ये कोई सुनाना चाहे तो सुनाए, पास्ट के अनुभव तो हैं ही, लेकिन इस भट्टी में 3 दिन आप लोग आए, कुछ पाया, कुछ सीखा, कुछ अनुभव किया, तो वो सुना सकते हैं, अगर सुनाना है तो किसी को सुनाना है, आ जाओ।
ओम शांति। अभी भाई जी ने इतना अच्छा क्लास कराया और हम लोग 3 दिन से योग भट्टी कर रहे थे, तो सभी अपने अपने पुरुषार्थ पे काम कर रहे थे, और जब भाई जी ने अभी योग कराया मेडिटेशन के, हम सभी उड़ने वाले हैं, तो अचानक से योग करते हुए बाबा के पास पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे सारी दादियां लाइट बनकर यहाँ आकर और हम सभी को इतना सकाश दे रही हैं, इतनी अशरीरी अवस्था का अनुभव हुआ जो कि मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, और सारी दादियों को मैं देख रही हूँ, तो धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आप सबका।
भाइयों में से कोई सुनाना चाहते भट्टी का अनुभव? नहीं। बहनों में से आगे आ जाइए, जल्दी आना।
भाइयों में क्यों नहीं बोल रहे हैं कोई?
भाइयों में से कोई एक भाई तो आगे आके सुनाए।
आओ एक जना तो आओ, पहली बार आए हैं ना भट्टी में, मधुबन की भट्टी में, आ जाओ आ जाओ।
ओम शांति।
आ जाओ माता जी, आ जाओ आप भी इधर आ जाओ।
मैं बिल्कुल से नया इस ज्ञान में आया,
नजदीक माइक,
मैं बेगूसराय सेंटर से हूँ।
माइक नजदीक रखो।
मैं बेगूसराय सेंटर से हूँ, बिल्कुल इस ज्ञान में नया आया, बहुत काल भक्ति करते हुए बीती, सरकार में अधिकारी था, अनायास एक दिन एक भाई से मुझे पता चला और मैं सेंटर के दरवाजे पर गया, मेरी मुलाकात सीता बहन से हुई और उन्होंने मुझे मेरा खुद से परिचय कराया, और इसके बाद मैं नित्य मुरली क्लास में जाने लगा, मैंने 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद बाबा मिलन में भी आने का सौभाग्य मिला कंचन बहन के माध्यम से, फिर भट्टी का जब मैंने सुना, उसी समय जाते समय किसी से सुना था कि पांडव भवन की भट्टी बहुत ही श्रेष्ठ भट्टी होती है, तो मेरे दिल में संकल्प आया कि काश ये भट्टी मेरे 65 वर्ष की उम्र के बाद, पता नहीं मेरी जिंदगी कितने दिनों की होगी, काश मैं अपनी जिंदगी में एक बार देख पाता, कंचन बहन ने मुरली क्लास के बाद कहा कि भट्टी पांडव भवन में हो रही है। मैं पहला व्यक्ति था, मैंने कहा दीदी मैं भी जाऊं, और मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं यहाँ जब आया तो मैंने चारों धाम की जो यात्रा की, और जहाँ भी बैठा, जिस जगह योग, मेरा योग पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ आने पर स्वतः योग लगने लगा, परम धाम दिखने लगा। और मेरा जितना भी ये दिखा, अस्पष्ट दिखता है कि मैं परम धाम में बाबा के सामने बैठा हूँ, बाबा के समक्ष बैठा हूँ। यहाँ जो बाबा का कमरा है, जब मैं जाता हूँ तो लगता है कि यहाँ से उठूँ ही नहीं, और मैं साक्षात लगता है कि बाबा के पास जाकर बैठ गया हूँ, रूह रिहान कर रहा हूँ। जब पीछे से भाई उठाते हैं कि आप यहाँ से जाएं, तभी हट पाता हूँ। अभी जब मैं भाई जी के साथ योग कर रहा था तो अस्पष्ट सूक्ष्म धाम में बाबा के पास, जिन दादियों की तस्वीरें मेरी स्मृति में नहीं थी, यहाँ से मैंने नजरों में डाला था, अस्पष्ट लग रहा था कि वो ज्ञान मूर्तियां, वो प्रकाश स्तंभ मेरे समक्ष है। यह अति सूक्ष्म ज्ञान है, और जो आपने मार्गदर्शन दिया है, जो और हमारे भाइयों ने मार्गदर्शन दिया, हमारी दीदियों ने मार्गदर्शन दिया, उस पर चलकर हम निश्चित सफलता तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति।
बहुत अच्छा भाई जी।
ओम शांति। दो दिन से मौन में थे, अभी हम बोल रहे हैं। तो ऐसा था कि आज सुबह सुबह जब अमृत वेले में बाबा के कमरे के अंदर गए थे, तो उस समय देख रहे थे कि सब कोई बार बार जा रहे थे आ रहे थे, तो सोफा पे थोड़ा सा बैठना फिर उठना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत बुजुर्ग माता भी आ रही थी, तो बाहर में मैं बैठ गई। आज बाबा बारिश नहीं कर रहे थे, तो बाहर में जब बैठी हुई थी तो बाबा को कहें, बाबा इस बार मौका मिला आपके पास 3 दिन रहने का, मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं जीवन भर उसे याद में जीते रहूं। तो बस क्षण भर बोलने की ही थी और मेरे हाथ में एक फूल गिर गया और एक पत्ता। मैं तो उसी समय ऐसी हो गई कि साक्षात भगवान ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता, कोई अगल बगल कोई कुछ नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि मेरा मन बुद्धि एकदम शांत लग रहा था, जो चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिल गया है। और हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा हृदय एकदम अभी भी उसी बात से बहुत खुशी में है। ओम शांति।
कहते हैं ना कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, क्या देता है? यही तो, कि जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं बाबा उसको अनुभव करा देता है। भले हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिन्हों को भी अनुभव हुआ होगा वो भी नंबरवार, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो जितना हमने समर्पण भाव से पुरुषार्थ किया 3 दिन में, इतनी इतनी झोली बाबा के पास से हमारी भर गई। भाई जी का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कल का जो दिन है हमारा, उमंग उत्साह का दिवस है। समान है मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। भाई जी को सभी एक हाथ की ताली से विदाई देंगे।